आप सब लोगों को मेरी नमस्ते। और आज हम की कहानियों में एक और मजेदार कहानी सुनते। अब पापा आप सुनाओ।
थैंक यू। आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ राजा दशरथ की। कौन थे राजा दशरथ? भगवान राम के पिता। आप सबको नाम उनका दशरथ ही पता है ना, लेकिन उनका नाम दशरथ नहीं था। दशरथ की उन्हें उपाधि मिली थी, यानी उन्हें टाइटल मिला था दशरथ का। उनका बचपन का और असली नाम था नेमी। और हुआ क्या है कि एक बार एक बड़ा भयंकर दुर्दंत राक्षस था जिसका नाम था शंभरासुर। उसकी और देवताओं की, देवराज की, इंद्र की बड़ी लड़ाई हो रही थी। तो उससे लड़ने के लिए देवराज इंद्र ने मदद मांगी रघुवंशी दशरथ की, नेमी की। नेमी बड़े प्रतापी राजा थे उस टाइम पे। वो युद्ध में, धनुर्विद्या में, रथ चलाने में बहुत माहिर थे। उनकी रथ चलाने की जो थी ट्रैवल स्पीड थी, वो दुनिया में सबसे अद्भुत थी। उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। और इसी कारण से एक बार तो राजा दशरथ शनि देव को का रास्ता रोकने के लिए पहुंच गए थे, वो भी सुनाऊंगा आपको आगे। और इस युद्ध में क्या हुआ कि वो जो शंभरासुर था, वो बहुत बाण चलाने में और अटैक करने में निपुण था। राक्षस था तो वो दसों दिशाओं से एक साथ युद्ध कर सकता था। अब दस दिशाएं कौन सी? आठ दिशाएं तो होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, फिर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, है ना, ऐसे आठ दिशाएं होगी। लेकिन ये तो होगी हमारे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। जब हम 3D में देखते हैं तो ऊपर भी और नीचे भी दो आयाम, वो भी तो हो गए ना कि एक तो आप ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो। तो वो ऐसा था शंभरासुर, इसलिए वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था कि वो बड़ी तेजी से दसों दिशाओं से अटैक कर सकता था। और इतनी तेज गति से और इतने कुशलता से रथ चलाने का किसी और को ज्ञान नहीं था जितना राजा नेमी को था। तो इसलिए उन्होंने बुलाया। उस टाइम तक उनके नेमी की शादी हो चुकी थी। पहली पत्नी कौशल्या थी, दूसरी केकई थी, और सुमित्रा तीसरी केकई थी, छोटी सबसे रानी। अब केकई भी रथ चलाने में बड़ी माहिर थी और वो हमेशा अपने पति के साथ भी रहती थी और उनकी प्रिय भी थी वो। तो उन्होंने भी जिद कर ली कि महाराज मैं आपके साथ चलूँगी। अब केकई रथ चला रही थी, राजा नेमी युद्ध कर रहे थे। तो राजा नेमी को पता नहीं था कि इस तरह से भी युद्ध किया में वो छल से या दस दिशाओं से कहीं से भी आगे पीछे से वार कर देगा। तो ऐसे में जो राजा नेमी थे उनको दो तीर लग गए, वो घायल हो गए। घायल होते ही रानी केकई ने बड़ी चतुराई से वहाँ से रथ को युद्ध स्थान से वो दूर ले गई, तब राजा का तीर निकाल के उनकी चिकित्सा की, उनके प्राण बचाए। तो जब राजा को होश आया तो उन्होंने देखा कि अरे तुमने तो मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ केकई, और तुम कोई भी दो वचन मांग लो मुझसे। तो रानी केकई बोली कि मेरे पास अभी सब कुछ है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी जान बचेगी मेरे लिए इतना ही बहुत है। लेकिन राजा नेमी थे वो बड़े वचन के पक्के थे, कहा नहीं मैं रघुवंशी हूँ लेकिन फिर भी चाहता हूँ कि तुम कोई वचन मांगो। तो केकई बोले ठीक है, आपको अगर देना है तो अभी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कभी जब ज़रूरत होगी तो मैं आपसे मांग लूँगी, मैंने आपके दोनों वचन लेके अपने पास संभाल के रख लिए। राजा नेमी ने भी कह दिया कि ठीक है। तो ये कह के राजा फिर से स्वस्थ होके और चल पड़े। अब कह के भी साथ जाने लगी तो बोले कि नहीं, अब की बार नहीं, मैं घायल हुआ और इस बार मैं तुम्हारे प्राण खतरे में नहीं डाल सकता, मैं खुद से जाके शंभरासुर का सामना करूँगा और मैं उसको उसी के हिसाब से युद्ध करूँगा और अपना रथ खुद ही चलाऊँगा। अब राजा दशरथ ने यहाँ पे पहली बार अपने रथ चलाने की और युद्ध करने की कला का जो था एक अद्भुत प्रमाण दिया। वो कैसे कि दसों दिशाओं से एक साथ युद्ध कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हर दिशा में एक रथ है और दसों दिशाओं में 10 रथ खड़े हैं जिन पे खड़ा होके हर दिशा से राजा नेम युद्ध कर रहा है। और ऐसे उन्होंने शंबरासुर को पराजित किया। वो जहाँ से मारता था उससे पहले ही दूसरी दिशा में उसके ऊपर अटैक हो चुका होता था, वो दिशा बदलता उससे पहले ही उसके ऊपर वहाँ हमला हो चुका होता। वो अगर ऊपर जाके करता उधर्वगामी होके यानी ऊपर की तरफ आकाश से हमला करता तो आकाश से और उससे पहले नीचे रसातल की तरफ जाने लगता, नीचे की तरफ जाने लगता तो वहाँ पे पहले ही अटैक हो चुका होता था। तो इतनी तेज स्पीड से इतना भयंकर युद्ध किया जैसे आजकल आप सोनिक देखते हो ना, इतनी तेज स्पीड, इतनी तेज स्पीड से दशरथ को रथ चलाने की कला आती थी। तब जब उन्होंने शंबरासुर को पराजित किया तो उन्हें दशरथ की उपाधि मिली और कहा कि राजन आप अपने नाम से नहीं अपने काम से अपने कर्म से जाने जाओगे और आज से आपका नाम राजा दशरथ ही प्रसिद्ध होगा जगत में। तो ऐसे राजा नेमि का नाम राजा दशरथ पड़ा था। और फिर जो केकई को दो वचन दिए थे वो दो वचन केकई ने कब यूज़ किए थे? एक वचन में तो राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया था, जब भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए भेज दिया था, उनका राज तिलक होने वाला था, और दूसरे वचन में भरत का राज तिलक मांग लिया था। तो वहाँ से ये दो वचन केकई को मिले थे जो राजा नेमि ने दिए थे और ऐसे राजा नेमि का नाम राजा दशरथ प्रसिद्ध हुआ। और दूसरा जो कहानी मैं आपको बता रहा था शनिदेव की, शनिदेव क्या है, मंदगामी है, सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, 2.5 साल में एक चक्र पूरा करते हैं ना एक राशि का। तो ऐसे ही सारे नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं हमारे, सारे नक्षत्रों में से होते हुए एक बार शनिदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले थे और अगर वो रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाते तो पृथ्वी पे सनलाइट सारी ब्लॉक हो जाती और कोई भी फल फूल सब्जी या कुछ भी चीज़ उग नहीं पाती थी, बिल्कुल अकाल सूखा वो पड़ जाता। तो ये बड़ी चिंता का विषय था और शनिदेव इतने बलशाली इतने वीर हैं कि उनके किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उनका रास्ता रोकने की, उनसे जाके बात करने की। तो नारद मुनि आए, नारद मुनि ने कहा राजा दशरथ को कि भाई आप इस टाइम पे मनु के बेटे हैं, आप इस टाइम पे पृथ्वी का राज्य संभाल रहे हैं, मनुष्यों की रक्षा कर रहे हैं, तो राजा होने के नाते आपका धर्म बनता है कि आप जाके रक्षा करें। फिर मैं कैसे रक्षा करूं? तो उन्होंने जैसे जामवंत ने हनुमान जी को याद दिलाया था कि तुम याद करो हनुमान अपनी शक्ति कि तुम्हारे अंदर वो शक्ति छुपी हुई है जिससे कि तुम समुद्र को एक छलांग में लांग के पार कर सकते हो। तो ऐसे ही नारद मुनि ने नहीं याद दिलाया कि आप याद करो अपने आपका नाम दशरथ कैसे पड़ा, आप अपने गति देखो। शनिदेव फिर भी मंदगामी हैं, अभी उन्हें रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने में टाइम लगेगा, उससे पहले तो आप आकाश मंडल को पार करके और उनके पास पहुंच सकते हो। तो वो गए, उन्होंने जाके और बाई चांस राजा दशरथ पहुँच गए टाइम पर, उससे प्रवेश करने ही वाले थे। तो उन्होंने जाके रथ से उतर के हाथ जोड़ के नीचे साष्टांग प्रणाम करके शनिदेव को कहा कि शनिदेव आप रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश मत करो क्योंकि ये सारे पृथ्वी पे जितने भी जीवन हैं या ब्रह्मांड के जो हमारा सौर मंडल है उसके लिए सबके लिए हानिकारक होगा। शनिदेव तो नहीं भाई, मेरे रास्ता रोकने वाले तुम कौन हो भाई, जहाँ मैं जाऊँगा जो मेरा रास्ता है मैं उसी रास्ते पर जाऊँगा। तो उन्हें प्यार से समझाया, रिक्वेस्ट करी, माने नहीं कर माने ना, मूव अवे, चुराटो मेरे रास्ते से। अब जो नहीं माने तो राजा दशरथ ने कहा देखो मैं जानता हूँ आपकी शक्ति को, मैं जानता हूँ आपके प्रकोप को, राजा हरिश्चंद्र के साथ जो हुआ और जिसके भी ऊपर आपकी दृष्टि पड़ी है उसका कष्ट झेलना पड़ा है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ शनिदेव, मेरी प्रजा मेरे लिए बच्चों के समान है और अपने बच्चों के लिए कोई भी पिता उनको भूखा मरने नहीं दे सकता है। तो अगर आप नहीं मानोगे तो भले मैं मर जाऊँ लेकिन मेरे जीते जी मैं आपको प्रवेश नहीं करने दूंगा। बोलो कैसे क्या करोगे? तो मैं आपसे युद्ध करूँगा। बोला अच्छा शनिदेव से युद्ध करोगे, इतनी अकड़ तुम्हारे में? तो उन्होंने हाथ जोड़ के नजरें नीचे करके और धनुष पे बाण चढ़ा लिया कि ये मेरा अहंकार नहीं है, मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से नहीं हटूंगा और इसका जो भी परिणाम होगा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, आप युद्ध के लिए सावधान हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने प्रत्यंचा पे बाण चढ़ा लिया तो फिर शनिदेव हंसने लगे, बोले राजन मैं ही परीक्षा ले रहा था कि तुम असल में अपना प्रजापालक हो भी नहीं या नहीं हो, मैंने तुम्हारे दशरथ होने की कहानी और नाम बड़े पराक्रम बड़ा सुना था, लेकिन क्योंकि मैं तो कर्म का कारक हूँ, मुझे तुम्हारे धर्म की नहीं, मुझे तुम्हारे कर्म की जांच करनी थी कि तुम अपना कर्म सही से, काम सही से करोगे या नहीं करोगे। जाओ आज के बाद कभी भी मैं रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश नहीं करूँगा, ये मेरे भगवान शंकर का आदेश भी नहीं था, लेकिन ये तुम्हारा टेस्ट होना था और ज़रूरी था, तो इसलिए ये ज़रूरी था। तब राजा दशरथ ने शनि स्तोत्र, शनि स्तुति में उनके लिए शनि स्तोत्र भी उनकी महिमा में लिखा था, वहीं पे गाया था और वो आज तक भी बहुत प्रसिद्ध है। कभी भी कोई भी जब शनिदेव की पूजा करते हैं तो हम शनि स्तोत्र, दशरथ कृत शनि स्तोत्र ही सबसे ज़्यादा गाते हैं, बोलते हैं, और उन्हें शनिदेव ने वरदान भी दिया था, आशीर्वाद भी था कि जो भी दशरथ के लिखे हुए शनि स्तोत्र का पाठ करेगा और श्रद्धा से और मन से उसको अपने अंदर उतारेगा तो उसके ऊपर मेरी हमेशा कृपा बनी रहेगी। तो ये थी राजा दशरथ के जीवन से जुड़ी हुई दो अद्भुत घटनाएँ और कहानियाँ जो कि आपको नॉर्मली शायद से नहीं पता होंगी, है ना।
गुड नाइट।
गुड नाइट।